ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजहंस श्रीमद् भागवतम का नौवां स्कंध और अध्याय ग्यारहवां, भगवान रामचंद्र जी का विश्व पर राज्य करने में अंतिम भाग जो है उसमें भी थोड़ी स्पष्टता की आवश्यकता है। रामचंद्र जी का राज्य, राम राज्य जिसे कहते हैं, राम राज्य की भावना सबके हृदय में होती ही है कि सभी सुख शांति चाहते हैं, लेकिन सुख शांति कैसे प्राप्त करें, किस ढंग से हम समाज में रहकर अपना उत्तरदायित्व निभाएं और किस ढंग से सरकार भी अपनी प्रजा के लिए, यानी कि जो जो संचालक हैं, जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं, वो अपने अपने कर्तव्य प्राण किस ढंग से करें जिसके द्वारा राम राज्य पुनः स्थापित हो सकता है। श्री प्रभुपाद जी भी इसके लिए काफी टिप्पणियां करते हैं। आज के श्लोक में हम बोलते हैं कि भगवान रामचंद्र जी का निर्मल नाम तथा यश सारे पापों को नष्ट करने वाला है। सारी दिशाओं में वह उसी तरह विख्यात है जिस तरह समस्त दिशाओं पर विजय पाने वाले हाथी का लटकता हुआ अलंकृत शूल हो। मार्कंडेय ऋषि जैसे महान साधु पुरुष अब भी महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्राटों की सभाओं में उनके गुणों का गान करते हैं। इसी तरह सारे ऋषि तथा देवता जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी सम्मिलित हैं, अपने अपने मुकुटों को झुकाकर भगवान की पूजा करते हैं। उन भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करता हूं, ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये सभी भगवान के ऐसे विशिष्ट चरित्र, देवता भी अपना सिर नवाते हैं, तो अन्य की तो बात ही कहां। भगवान रामचंद्र अपने धाम को लौट आए जहां भक्ति योगी जन जाते हैं। यही वह स्थान है जहां अयोध्या के सारे निवासियों भगवान को उनकी प्रकट लीला में नमस्कार करके उनके चरण कमल का स्पर्श करके उन्हें पिता तुल्य राजा मानकर उनकी बराबरी में बैठकर या लेटकर या मात्र उनके साथ रहकर उनकी सेवा करने के बाद वापस गए। ये जो सारा व्यवहार है तो अयोध्या में होता था। जब भगवान अपने धाम में गए, लोग उसे साकेत धाम को भी जानते हैं, साकेत धाम में, तो ये भगवान के धाम में भी वहां ऐसी निरंतर लीला चलती रहती है। भगवान भगवद्गीता में चौथे अध्याय के नौवें श्लोक में कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। जो मेरे प्राकृतिक की दिव्य प्रकृति तथा मेरे कार्यकलापों को जानता है वह इस शरीर को त्यागने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता, अपितु हे अर्जुन वे मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। यहां उसकी पुष्टि हुई है, ये सिद्धांत की पुष्टि रामायण में हुई है। अयोध्या के सारे निवासी जिन्होंने प्रजा के रूप में भगवान रामचंद्र जी का दर्शन किया है, दास रूप में उनकी सेवा की, उनके साथ मित्र तथा अन्य रूप में बैठे बोले या उनके शासन काल में उपस्थित थे, वे सभी भगवान धाम वापस गए। जिस भक्त की भक्ति पूर्ण होती है वह इस शरीर को त्याग करके विशेष ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, जहां भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। तब उस प्रकट लीला में विभिन्न पदों पर रहकर भगवान की सेवा करना सीख कर भगवान अंत में सनातन धाम में पहुंचता है। इसका मतलब है सेवा हमें यही सीखनी है। यदि इस जीवन में इस सुविधा जो प्रभुपाद जी ने पैदा की है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, इसमें यदि ऐसी सेवा करना हम नहीं सीखे तो भगवत धाम में जाकर हमें कोई सिखाने वाला होता ही नहीं, न तो जाने की भी अपनी सामर्थ्य बनती है, हम नहीं जा सकते। तो ये सीखने का मूल हेतु ये है कि ये भगवत धाम का ये सारा धाम की ट्रेनिंग का ग्राउंड यहां बना रहे, ये प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। ऐसे नहीं कोई मंदिर बना दो काम चल जाएगा, इट्स फॉर ट्रेनिंग। हम अपनी मनमानी कैसे करें, इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ये जो वास्तविक ट्रेनिंग है वो प्रभुपाद जी ने अपनी इतनी कृपा करके और इनकी कितनी इच्छा होगी कि यहां सबको ऐसी ट्रेनिंग मिले जो भगवत धाम जाने के लिए सक्षम बने, क्योंकि वहां सनातन अवस्था वाला जो धर्म है तो यही सीखना, वहां कोई सिखाने वाला नहीं है, वहां कोई वो क्वालिफिकेशन देने वाला भी नहीं है, ये तो यहां से ही क्वालिफिकेशन प्राप्त करके जाना पड़ता है। तो भगवत गीता में इस सनातन धाम की भी का उल्लेख मिलता है कि ये सनातन धाम कोई कपोल कल्पित नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्ता व्यक्त सनातन। जब भगवान की नित्य लीला में प्रवेश पा जाता है वह नित्य लीला प्रविष्ट कहलाता है। यह समझने के लिए कि रामचंद्र जी क्यों वापस गए, यहां यह उल्लेख हुआ है कि वे उस विशेष स्थान को गए जहां भक्ति योगी जानते हैं। निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत के कथन का इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि इसका अर्थ यह है कि भगवान अपने तेज में प्रविष्ट हुए, अतः वे निराकार हो जाते हैं। देखो जहां धाम की बातें हैं तो निराकार निर्गुणवादी क्या कहेंगे, नहीं वो तो तेज में प्रविष्ट हो गए, वही उसका धाम। भगवान निर्गुण निराकार, यदि साकार रूप में आते हैं और अपने धाम में जाते हैं फिर भी सबको वहां निराकार बना देने वाले, ये मायावादी निर्गुण निराकार तत्ववादी कहलाते हैं। तो उन लोगों में कोई सामर्थ्य नहीं है क्योंकि भक्ति नहीं है, जब भक्ति नहीं है तो वो बल भी नहीं है। निर्विशेषवादी भागवत के कथन से इसे भ्रम में पड़ जाते हैं कि इसका अर्थ यह है कि भगवान अपने तेज में प्रविष्ट हुए अतएव वे निराकार हो जाते हैं, किंतु भगवान तो पुरुष है और उनके भक्त भी पुरुष हैं, वो परम पुरुष कहलाता है और हम वही पुरुष, यानी कि हम भौतिक भोगों की झंझना करने वाले पुरुष, पुरुष बुद्धि, वी वांट टू एंजॉय, हमें आनंद की खोज में हम तलसते रहते हैं आनंद के लिए। तो आनंद की बुद्धि, आनंद प्राप्त करने की बुद्धि पुरुष बुद्धि कहलाती है। भगवान हमें यह सिखाते हैं कि आनंद अपने अंदर है, अपनी निजी शक्ति का उपयोग करके भगवान आनंद देते हैं, वो उनकी लीला कहलाती है। हम अपनी निजी शक्ति है ही नहीं, सब उधार, अपनी अपनी शक्ति है ही नहीं, सब उधार ही है। भगवान की शक्ति का उपयोग करके हम आनंद पाना चाहते हैं, जबकि भगवान को तो अपनी खुद की शक्ति, यानी कि उधारी का कर्जा बहुत बड़ा होता है, और चुकाने के लिए सेवा ही एकमात्र माध्यम है। तो निर्गुण निर्विशेषवादियों को कोई न तो सेवा है न कोई वो लोग का कोई ऋण या कर्जा समझते हैं, मुफ्त भगवान की सारी दी गई संपत्ति का उपयोग खुद पुरुष बुद्धि लेकर आकर करते हैं,
और भगवान को कहते थे तो निर्गुण निराकार।
भगवान परम पुरुष है क्योंकि हम भी पुरुष हैं।
यदि भगवान में अपने आनंद की वृत्ति नहीं होती तो हमारे में कैसे आई, उसके अंश के अनुसार आनी ही चाहिए। इसलिए हम में है, तब भगवान को निर्गुण निराकार कहना मूर्खता बताई जाती है। निसंदेह सारे जीव भी भगवान के समान भूतकाल में पुरुष थे, वर्तकाल में भी हैं और शरीर त्यागने पर भी बने रहेंगे, इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। न त्वेवाहम जातुनाशम न त्वम मे जनाधिपा न चैव भविष्याम सर्वे वयम अथा परम। दूसरे अध्याय में भगवान कह देते हैं कोई काल में हम पुरुष के रूप में उपस्थित नहीं थे, ऐसा नहीं है, हम भूतकाल में थे, हम वर्तमान में और भविष्य में भी पुरुष बनते रहे। यानी कि हमारा अस्तित्व नित्य होता है लेकिन भगवान का अस्तित्व भी नित्य है, वो नित्यों का नित्य होता है। तो नित्यो नित्यानाम चेतनाश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एको बहुनाम, ये एक ही सारी जीवों की कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। तो ये स्पष्ट होता है, ये वेदों के वचन में, भगवद गीता के वचन में, भागवत के वचन के अनुसार भगवान परम पुरुष हैं। तो ये मायावादी निर्गुण तत्ववादी इनको मारो गोली, देखते ही झापटना। वो हमें कोई नई चीज नहीं सिखा सकता लेकिन इनको बोलने का हमें मौका नहीं देना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश है, सारा जगत पश्चिम देश नहीं, अपने भारत में भी निर्गुण तत्ववादी है। इसीलिए वो जो डॉक्टर था सुबह में उसने हमने झाकट लगाई निर्गुण बोल उठा, काफी डांटना थी उसको, कैसे सिद्ध कर सकते, चुप्पी हो गए, कुछ जानता नहीं था, फिर भी बकवास कर दिया उसने। हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र जी के गुणों के संबंध में कथाओं को कानों से सुनता है वह अंततो गत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और कर्म बंधन से छूट जाएगा। दो चीज प्राप्त होनी चाहिए भगवान की कथा जो सुनने वाले, एक ईर्ष्या से मुक्त हो और दूसरे कर्मबंधन से मुक्त हो। ईर्ष्या से क्यों? क्योंकि भगवान के साथ ईर्ष्या का ही कारण उसे भौतिक जन्म देने वाला और कर्म बंधन में फंसता है, वो जन्म मृत्यु का चक्कर लगाता रहता है, भगवत राम वापस जाने के लिए उसकी कोई इच्छा नहीं है। तो यदि भगवान रामचंद्र जी की कथा सुनने में इतनी ताकत है तो जो बारंबार सुनते हैं उनमें कितनी ताकत आनी चाहिए, लेकिन उसका विपरीत परिणाम देखते हैं, कथा सुनी सुनी फूटे आकांतो ये नायु ब्रह्म ज्ञान। यानी कि दोनों चालू हैं और हम चालू रखते हैं, एक ईर्ष्या वृत्ति चालू है भगवान से और दूसरा हमारा कर्म बंधन चालू है, इसीलिए हमें वो प्राप्त नहीं, वो चालू रखने का कारण वो निकालना नहीं चाहते, अपने जीवन में से कावा नहीं निकालना चाहते, मांस नहीं निकालना चाहते, पर रामायण पढ़ते रहे। तो इस जगत में हरेक व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है, यहां तक कि धार्मिक जीवन में यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका हो तो अन्य भक्त उसे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जब तक मृत्यु जन्म मृत्यु के कारण पूर्णतया मुक्त नहीं हो लेता तब तक वह सनातन धर्म में प्रविष्ट नहीं हो सकता। यह भक्तों के लिए भी लागू है, ऐसा नहीं कि मैं भगत हूं इसलिए मुझे प्रिविलेज है और मैं रामायण पढ़ता हूं इसलिए मेरे यहां हनुमान जी चाकरी कर लेंगे, मुझे यमदूत नहीं ले जा सकते क्योंकि महात्म्य में लिखा, लेकिन एक बेवकूफ ने लिखा जो शास्त्र से पूर्णतः परिचित नहीं है।
इसलिए हमने कल बताया था ये गोपाल दास ने जो रामचरित मानस के लिए जो लिखी है फिर 100 साल पहले लिखी, रामचरित मानस हुआ 1631 में तुलसीदास ने की, ऐसा क्यों लिख सकता है दुनिया को बेवकूफ बनाने अपनी रामायण बांटने के लिए। फिजी ने इतनी रामायण ये एक ही व्यक्ति की है, साउथ अफ्रीका में भी उसी की है और गयाना में भी उसकी है, इन तीन देशों में अपने भारतीय लोग गए हैं और वहां की रीति रस्म से वो मांस मच्छी खाने वाले हो गए और शराब और नशे में चुपचाप पड़ते हैं। फिर भी रामायण पढ़ते रहो, हमारी बिक्री करते रहो, पंडित ज्वाला प्रसाद वाली रामायण हर एक के घर में होगी, लेकिन उससे न तो भावबंधन कटा है न तो ईर्ष्या से मुक्त हुए। इसलिए हमारे भारतीय लोग उठ नहीं पा रहे, ये स्पष्टता करनी पड़ती है, करनी भी है तो क्या करें, भक्ति में आगे बढ़ना है, फायदा क्या नहीं तो मंदिर बनाने का। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बन जाता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता, अतएव वह दिव्य पद पर स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहां तक कि अपने शत्रु से भी नहीं, क्योंकि भक्त यह जानता है कि भगवान परम रक्षक है, अतएव वह सोचता है कि तथाकथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थिते उपजामि अहम्, जो जिस प्रकार अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं फल देता हूँ। अतएव भक्त को पूर्णतया ईर्ष्या विहीन होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से ईर्ष्या करना महान अपराध है, क्योंकि यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर कथा श्रवण में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस भगवत धाम को जाने का पात्र बन जाता है। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं कि भगवान ने किस तरह का बर्ताव किया और अपने विस्तार अंश स्वरूप अपने भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया और उनके भाइयों तथा अयोध्या वासियों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, ये जानने की आवश्यकता होनी चाहिए। ये भक्ति का व्यवहार वो अपने वर्तन में आना चाहिए। वैष्णव एटिकेट जो कहते हैं लेकिन वो क्वालिटी आए बिना वैष्णव एटिकेट कैसे, ऊपर ऊपर की जो ईर्ष्यालु होते हैं वो ऊपर ऊपर की वर्तन करते हैं, बहुत चालाकी पूर्वक करते हैं, वो बड़े बड़े लोगों में भी है। तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, अपने छोटे भाई भरत के आग्रह पर राज सिंहासन स्वीकार करने के बाद भगवान रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया कि वह बाहर जाकर सारे विश्व को जीते और स्वयं राजधानी में रहकर सारे नागरिकों तथा प्रसादों के वासियों को दर्शन देते रहे और अपने अन्य सहायक के साथ राजकाल को निगरानी करें। भगवान अपने साम्राज्य की निगरानी क्योंकि पालन करना भगवान का धर्म है, पैदा करना भी भगवान का धर्म है, संहार करना भी भगवान का धर्म है और पालन करना भी भगवान का धर्म है। इसलिए अपने भाइयों को कहा जाओ आप विस्तार करो, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं चलो मैंने आपको सिखाया अब आप जाओ विस्तार करो, गो एंड प्रीच। हर एक व्यक्ति को प्रचिंग की आवश्यकता है। तो ये विस्तार होना चाहिए। भगवान अपने किसी भक्त या सहायक को इंद्रिय तृप्ति में लीन रहने की अनुमति नहीं देते, भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाई महल में भगवान के दर्शनों का आनंद ले सकते थे, किंतु नहीं। भगवान ने उन्होंने आदेश दिया कि बाहर जाकर सारे विश्व को जीते, ऐसी प्रथा थी और आज भी कहीं कहीं है ना? और कि अन्य सारे राजा सम्राष्ट्र की श्रेष्ठता स्वीकार करें। यदि किसी छोटे राज्य का राजा सम्राष्ट्र की श्रेष्ठ स्वीकार नहीं करता तो युद्ध होता था और उसे सम्राट की अधीनता स्वीकार करनी होती थी, अन्यथा सम्राट के द्वारा पूरे देश में शासन चला पाना संभव नहीं हो पाता था। भगवान रामचंद्र जी ने अपने भाइयों को बाहर जाने के लिए आज्ञा देकर उनके साथ दया दिखलाई। वृंदावन में रहने वाले अनेक भगवत भक्तों ने व्रत लिखा है कि ले रखा है कि भगवान कृष्ण भावनात्मक प्रचार करने के लिए वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, किंतु भगवान का कहना है कि कृष्ण भावनामृत सारे विश्व में प्रत्येक गांव में प्रत्येक नगर में प्रसारित हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु का यह खुला आदेश है, पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार में हरि दे बोला नाम। अतएव शुद्ध भक्तों को भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए, नहीं कि एक ही स्थान में सड़ते रहना चाहिए। और यह सोचकर गर्वित होना चाहिए कि यदि यह वृंदावन नहीं छोड़ेगा और एकांत में कीर्तन करेगा तो वह महान भक्त बन जाएगा। भक्त को भगवान के आदेश को पूरा करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। अतएव हरेक भक्त को चाहिए कि वह किसी से भी मिले उसे भगवान का आदेश मानने को कहे और इस प्रकार उपदेश द्वारा कृष्ण भावनामृत का प्रसार करे। भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, यही भगवान का आदेश है। हर एक को इस आदेश को मानना चाहिए क्योंकि यह दिग्विजय है। दिग यानी दिशाओं का विजय, सारी दिशाओं में भगवान का नाम का फैलाव इस अभियान संकीर्तन यज्ञ द्वारा, तो जब हम दिग्विजय बनेंगे। प्रत्येक सैनिक तथा भक्त का यह धर्म कि वह हर एक को इस जीवन दर्शन को ग्रहण करने के लिए कहे। निसंदेह जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वे उपदेश नहीं देते, किंतु भगवान उन पर की कृपा दृष्टि फेरते हैं, जैसे कि भगवान ने अयोध्या में रहकर अपने लोगों को अपना दर्शन दिया। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने अपने भाइयों को अयोध्या छोड़ने के लिए आज्ञा दी क्योंकि वे प्रजा पर विशेष कृपालु थे। नहीं, भगवान हरेक पर दयालु है और वे जानते हैं कि हर एक व्यक्ति पर उसकी क्षमता के अनुसार किस प्रकार की दया की जाए। दया न मर्सी कृपा, कृपा ये आदेश की कृपा है। भगवान के लिए आदेश देना भी कृपा है। जो व्यक्ति भगवान के आदेश का पालन करता है वही शुद्ध भक्त है। यानी कि भरत शत्रुघ्न इत्यादि सभी ने आदेशों का पालन किया और इसीलिए यह आदेश का पालन ही उसकी भक्ति की महिमा है। भगवान रामचंद्र जी के शासन में अयोध्या की सड़कें सुगंधित जल से तथा हाथियों द्वारा अपनी सूंडों से फेंके गए सुगंधित जल से बूंदों से सींची जाती थी। अब नागरिकों ने देखा कि भगवान स्वयं ही इतने वैभव के साथ शहर के मामलों की देखरेख कर रहे हैं। वैभव होना क्योंकि भगवान स्वयं है तो लक्ष्मी क्यों नहीं विराजेगी वहां? वैभव होते भगवान उसकी स्वयं देखरेख कर रहे हैं, तो उन्होंने इस वैभव की बुरी बुरी प्रशंसा की। भगवान बिना का वैभव झूठा है। यानी कि दिखावा करना ठीक नहीं। बड़े बड़े आयोजन में भगवत भक्ति का प्रचार होना ही चाहिए। यदि हमें मौका ही नहीं मिलता तो दिखावा मात्र रह जाता है। रामचंद्र जी के शासन काल में हम राम राज्य के वैभव के विषय में सुन रखा है। यहां पर भगवान के राज्य वैभव का एक उदाहरण प्रस्तुत है। अयोध्या की सड़कें न केवल बुहारी जाती थी पर सुगंधित जल तथा हाथी के सुंडों द्वारा छिड़के गए सुगंधित तरल से सींची जाती थी। उस समय छिड़काव करने वाले यंत्रों की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि हाथियों में जल को अपनी सुंड में भरकर छिड़कने की सहज शक्ति पाई जाती है। हम इसी एक उदाहरण से शहर के वैभव का पता लगा सकते हैं कि यही नहीं कि नागरिकों को भगवान द्वारा राज्य के सारे मामलों की निगरानी करते देखना सौभाग्य को भगवान द्वारा राज्य के सारे मामलों भगवान द्वारा राज्य के सारे मामलों की निगरानी करते देखना का सौभाग्य प्राप्त था। ये भगवान स्वयं निगरानी रख रहे हैं, ऐसे नहीं कि अपने एजेंटों को भेज के या अपनी मिनिस्ट्री फैलाते रहते हैं, स्वयं जाते हैं। जो स्वयं लीडर अपने अंदर रहने वालों की देखभाल नहीं करता वो लीडर नहीं है। इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा राज्य होते हैं तो स्वयं देखने जाते थे। भगवान आलसी सम्राट न थे, जैसा कि हम उनके कार्यों से देख रहे हैं कि राजधानी से दूर के मामलों की देखरेख रखना तथा सम्राट के आदेशों का पालन न करे उसे दंड देने के लिए भाइयों को भेज रखा था, यह दिग्विजय ही कहलाते। नागरिकों के शांत जीवन बिताने की सारी सुविधाएं प्राप्त थी और वे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार समुचित लक्षणों से संपन्न थे, जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके थे। वर्णाश्रम गुणान्विता नागरिकों ने वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार प्रशिक्षण पाया था। लोगों का एक वर्ग ब्राह्मण था, एक अन्य वर्ग क्षत्रिय था, एक तीसरा वर्ग वैश्यों का था, तो चौथा वर्ग शूद्रों का था। ऐसे वैज्ञानिक विभाजन के बिना अच्छी नागरिकता का प्रश्न ही नहीं उठता। राजा उदार तथा कर्तव्यपरायण होने के कारण अनेक यज्ञ करता था और प्रजा को पुत्रवत मानता था। नागरिक भी वर्णाश्रम प्रणाली में प्रशिक्षित होने से अत्यंत आज्ञाकारी एवं सुसंयमित थे। संपूर्ण राज्यतंत्र इतना वैभवशाली तथा शांत होता था कि सरकार सड़कों पर सुगंधी जल का बिछाव करा सकती थी, यहां तो कीचड़ भी नहीं उठाते। तो राम राज्य कैसे रहे, अन्य व्यवसाय की तो बात ही छोड़े, क्योंकि सारी नगरी में सुगंधित जल से छिड़काव हुआ था, अतः वो हम अनुमान लगा सकते हैं कि अन्य मामलों में वह कितना वैभवशाली थे। तो भला रामचंद्र के राज्य में लोग सुखी क्यों नहीं रहेंगे। सारे महलों के द्वार, सभा भवन, चबूतरे, मंदिर तथा अन्य ऐसे स्थान सुनहरे जलपात्र से सजाए और विभिन्न प्रकार की झंडियों से अलंकृत किए थे। जहां कहीं भगवान रामचंद्र जाते वहीं केला के वृक्षों तथा फल फूलों से युक्त सुपारी के वृक्षों से स्वागत द्वार बनाए जाते थे और इन द्वारों को रंग बिरंगी वस्त्र से बनी पताओं का बंदरवारों दर्पण तथा मालाओं से सजाया जाता था। भगवान रामचंद्र जहां कहीं भी जाते तो लोग पूजा की सामग्री लेकर उनके पास पहुंचते और उनके आशीर्वाद की याचना करते। वे कहते हैं, प्रभु जिस प्रकार आपने अपने शुक्र अवतार में समुद्र के नीचे से पृथ्वी का उद्धार किया उसी तरह अब हमारा पालन करें, हम आपसे यही आशीष मांगते हैं, हमारा उद्धार करो, आपकी भक्ति में बनाए रखो। तो मंदिर में भी ऐसा हमेशा वातावरण बना रहे तो अवश्य राम राज्य में सुख से रहेंगे। तत्पश्चात दीर्घ काल से भगवान का दर्शन न किए रहने से नर तथा नारी उनके देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक होकर अपने अपने घरों को त्याग करके महलों की छत पर चढ़ गए। कमल नयन भगवान रामचंद्र के मुखमंडल का दर्शन करके न उदाने के कारण वे उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। तत्पश्चात रामचंद्र अपने पूर्वजों के महल में गए। इस महल के भीतर विविध खजाने तथा मूल्यवान अलमारियां थी। प्रवेश द्वार के दोनों ओर बंदूक बैठकें मूंगे से बनी थी। आंगन वैदूर्य मणि के खंभों से घिरा था। फर्श अत्यधिक पॉलिश की कोई मरकत मणि से बनी थी और नीम संगमरमर की बनी थी। सारा महल झंडियों तथा मालाओं से सजाया गया था एवं मूल्यवान चमचमाते मणियों से अलंकृत किया गया था। महल पूरी तरह मोतियों से सजाया गया था और धूप दीप से घिरा था। महल के भीतर स्त्री पुरुष देवताओं के समान थे और वे विविध आभूषणों से अलंकृत थे। यह आभूषण उनके शरीरों में पहने जाने के कारण सुंदर लग रहे थे। श्रेष्ठ विद्वान पंडितों में अग्रणी भगवान रामचंद्र ने उस महल में अपनी लादिनी शक्ति सीता देवी के साथ निवास किया और पूर्ण शांति का भोग किया। इसका मतलब यह है कि जो असली सीता भगवान के साथ हमेशा रही है वो कभी विलग हुई ही नहीं। हाँ, नहीं तो रामचंद्र जी ने अयोध्या में प्रजापालन के समय के दरमियान सीता को कैसे पुनः स्थापित। यदि सीता वाल्मीकि आश्रम में अपने दो बेटों को छोड़कर धरती में समा गई कहते हैं, तो फिर से बाहर कब निकली? और भगवान रामचंद्र जी के महल में कैसे आ गए? ये भागवत उसकी पुष्टि करता है। सीता के साथ अपनी लादिनी शक्ति के साथ भगवान रामचंद्र जी ने अयोध्या में पूर्ण शांति का भोग किया। धर्म उल्लंघन किए बिना उन रामचंद्र जी जिनके चरण कमलों की पूजा भक्तगण ध्यान में करते हैं, जब तक चाहा दिव्य आनंद की सारी सामग्री का भोग किया। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति मृच्छति। ये लागू होता है, भगवान भोक्ता है। तो भगवान रामचंद्र जी ने ऐसे भोग, लेकिन ये भोग उसको छूता या बंधन करता नहीं है, क्योंकि वो मालिक है। हम मालिक नहीं है, इसलिए हम बंधन में पड़ते हैं। तो ये रहस्य श्रीमद् भागवतम खुला करता है कि भगवान रामचंद्र अपनी लादिनी शक्ति सीता के साथ साकेत धाम में वापस गए। अकेले नहीं गए, सीता धरती में समाये गई, उसको धरती में छोड़ के नहीं गए। धरती से सीता पैदा हुई थी, इसीलिए धरती में समाना। लेकिन भगवान की अंतरंग शक्ति लादिनी शक्ति भगवान के से कभी बिछुड़ नहीं सकती। ये लीला के कारण जो अचिंत्य गुण स्वरूपम अचिंत्य, हमारी मर्यादित बुद्धि से हम उसके बारे में सोच नहीं सकते। वो तो सिर्फ प्रेमांजनक चरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भक्तगण अपने हृदय में प्रेम का अंजन डालकर हमेशा भगवान की लीलाओं निहारते रहते हैं। उसे अपनी छोटी बुद्धि से समझने का प्रयत्न नहीं करना, बल्कि भगवान की भक्ति से पूर्ण पवित्र होकर आध्यात्मिक गुणों में हमें नजर करने से उसका हमें समाधान होता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।